आयत नंबर 45 से हम देखेंगे। इस कालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह युबशिरुकी बिकलिमते मिन हुस्मुहुल मसीहु ईसा इब्नु मरियम। जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह ताला तुझे अपने एक कलमे की खुशखबरी देता है जिसका नाम मसीह ईसा इब्ने मरियम है, जो दुनिया और आखरत में जी इज्जत है और मेरे मुकर्रबीन में से है। वो लोगों से अपने गहवारे में बात करेगा और अधेड़ उम्र में भी, और वो नेक लोगों में से होगा। कहने लगी, इलाही, मुझे लड़का कैसे होगा, हालांकि मुझे तो किसी इंसान ने हाथ भी नहीं लगाया। फरिश्ते ने कहा, इसी तरह अल्लाह ताला जो चाहता है पैदा करता है। जब वो किसी काम को करना चाहता है तो सिर्फ ये कह देता है कि हो जा, और वो काम हो जाता है। अल्लाह ताला इसे लिखना और हिकमत और तौरात और इंजील सिखाएगा, और वह बनी इसराइल की तरफ रसूल होगा कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की निशानी लाया हूँ। मैं तुम्हारे लिए परिंदे की शक्ल की तरह मट्टी का परिंदा बनाता हूँ, फिर इसमें फूंक मारता हूँ तो अल्लाह के हुक्म से परिंदा बन जाता है, और अल्लाह ताला के हुक्म से मैं मादरजाद अंधे को और कोड़ी को अच्छा कर देता हूँ और मुर्दे को जिंदा कर देता हूँ, और जो कुछ तुम खाओ और जो अपने घरों में जखीरा करो मैं तुम्हें बता देता हूँ। इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान लाने वाले हो। और मैं तौरात की तस्दीक करने वाला हूँ जो मेरे सामने है, और मैं इसलिए आया हूँ कि तुम पर बाज वो चीजें हलाल करूँ जो तुम पर हराम कर दी गई हैं, और मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की निशानी लाया हूँ, इसलिए तुम अल्लाह से डरते रहो और मेरी फरमा बरदारी करो। इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फाबुदू, यकीन मानो मेरा और तुम्हारा रब एक ही है, तुम सब इसी की इबादत करो, यही सीधी राह है। आयत नंबर 45 से 51, 45 से 51, इसका उनवान है ईसा इत्माम हुज्जत के लिए आए। आसान लफ्जों में इसको क्या कहेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम हुज्जत को तमाम करने के लिए आए। अल्लाह ताला ने यहूद को अपने एक ख़ास काम के लिए चुना था, और वो काम क्या था कि वो दुनिया में अल्लाह के पैगाम को आम करें। लेकिन यहूद ने इस पैगाम को आम करने की बजाय उस पैगाम को बदल के इस तरह से कर दिया कि गोया कि उसकी असल शक्ल भी जो थी वो बाकी न रही। अब अल्लाह ताला की तरफ से वो वक्त आ गया था कि वही काम जो कल तक यहूद के पास था, आज वो वहां से बनी इसराइल से निकलकर बनी इस्माइल की तरफ आ जाए। इसके लिए अब जरूरत थी कि इन पर एक हुज्जत तमाम की जाए, और अल्लाह ताला ने ये हुज्जत तमाम की हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत में। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के आखिरी पैगम्बर थे। इनका दुनिया में एक ऐसे मा फौकुल फितरत तरीके पर आना अल्लाह की निशानी थी, और हम अल्लाह तला की निशानियों की रोशनी में कुरान पाक को जब देख रहे हैं तो यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश एक बहुत बड़ी निशानी है। हकीकत यह है कि अल्लाह की जात इंसान के लिए हर तरह से वो चीजें फराहम करती है कि जिससे इंसान अल्लाह तला की मार्फत के करीब आ जाए और उसको वो बात समझ में आ जाए जो आम दिनों में नहीं आती। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दुनिया में आना, बगैर बाप के पैदा होना, ये कितनी बड़ी निशानी थी कि कोई शख्स भी अगर आंखें खोल कर इसको देखता तो वो अल्लाह ताला की इस कुदरत के ऊपर गवाह हो जाता कि अल्लाह ताला जो चाहे वो करता रहे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चूंकि हुज्जत तमाम करने के लिए आए थे, तो उन्होंने यहूदी उलमा की वो तमाम तब्दीलियां जो उन्होंने उस वक्त तक की तौरात में कर दी थी उसको तब्दील करना शुरू किया, और उनकी असल लोगों को जब बताई, यही वजह हुई कि यहूद उलमा जो थे इनके दुश्मन हो गए, और उन्होंने सोचा कि ये तो हमारी सारी ही चीजों को खोल देगा, तो बहाना बना लिया उनकी खिलाफ अकल पैदाइश का कि ये तो वलदु ज़िना है नऊज़ुबिल्लाह, और इसकी विलादत तो बाप के बगैर हुई। अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कुछ ऐसा कमाल दिया हुआ था कि बात बड़े खूबसूरत तरीके से करते थे, और जब ये बात करते तो उलमाए यहूद दंग के दंग रह जाते। ऐसे ही मौके पे इन्होंने सोचा कि क्यों न इस जुबान को बंद करा दिया जाए। उस दौर में भी यही तरीके थे, आज के दौर में भी यही तरीके हैं कि जो जुबान हक बोले उसको बंद करवा दो। वो लोग जो हक को बर्दाश्त करने की ताब नहीं रखते उनका अमूमन यही रवैया होता है। अल्लाह ताला ने इन आयात में हमें बता दिया कि यहूद ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब कत्ल करने की कोशिश की, अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से उनको ऊपर उठा लिया, जिसका तज़किरा अगली आयतों में है। फलम्मा अहस्सा ईसा मिन्हुमुल कुफ्र, मगर जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इनका कुफर महसूस किया तो कहने लगे, अल्लाह ताला की राह में मेरी मदद करने वाला कौन है? हवारियों ने कहा कि हम अल्लाह की राह के मददगार हैं, हम अल्लाह ताला पर ईमान लाए और आप गवाह रहिए कि हम ताबेदार हैं। रब्बना आमन्ना बिमान ज़लत वत्तबअना रसूल फ़क्तुबना मा शाहिदीन, ए हमारे पालने वाले माबूद, हम तेरी उतारी हुई वही पर ईमान लाए और हमने तेरे रसूल की इत्तबा की, बस तू हमें गवाहों में लिख ले। और काफिरों ने मकर किया और अल्लाह ताला ने भी मकर किया, यानी खुफिया तदबीर की। اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیریں کرنے والوں میں سے بہتر ہے۔ اس قال اللہ یا عیسی انی متوفیک و رافیک الیہ، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں اور تیرے تابع داروں کو کافروں کے اوپر غالب کرنے والا ہوں قیامت کے دن تک، پھر تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، میں ہی تمہارے آپس کے تمام تر اختلافات کا فیصلہ کر دوں گا، پھر کافروں کو تمہیں دنیا اور آخرت میں سخت تر عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، لیکن ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا ثواب پورا پورا دے گا اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ جسے ہم تیرے سامنے پڑھ رہے ہیں آیتیں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 52 سے 58، ان کا عنوان ہے اللہ کے فیصلے عدل اور انصاف والے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی اس ناپاک سازش کا ذکر کیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جان لینے کی کوشش تھی، اور انہوں نے اس آواز کو بند کرنا چاہا جو حق کو لوگوں کے سامنے کھول رہی تھی۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اس قسم کا معاملہ کر دیا کہ لوگ حیران رہ گئے، اور ایک ایسا معاملہ پیش ہوا جو آج تک دنیا میں نہ ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف کھینچ لیا اور ان کی جگہ پہ ایک حواری جو ان کا ساتھی تھا اس کو یہود نے قتل کر دیا۔ یہ وہ بنیاد تھی جس کی وجہ سے پھر بعد میں یہود اور نصارہ کے کئی سیکٹس بن گئے۔ کچھ کہنے لگے حضرت عیسیٰ قتل ہو گئے، کچھ نے کہا کہ وہ قتل ہوئے دوبارہ زندہ ہوئے، کچھ نے کہا وہ زندہ آسمانوں پہ چلے گئے، اور اس طرح سے اختلافات ہوتے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کی، یہی کوشش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہود نے کئی بار کی۔ آپ کی مدنی زندگی میں کئی قاتلانہ حملے کیے گئے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو غالب کرنا چاہے وہ اس کو غالب کرتا ہے۔ اصل بات جو اس میں غور طلب ہے وہ یہی ہے کہ حق کو آنچ نہیں، حق بات کہتے رہیے اچھے طریقے سے، پھر اگر اس کی وجہ سے کوئی دشمن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے جو بچا لے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جان لینے کی کوشش چونکہ یہود نے کی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا چند لوگوں نے، اللہ تعالیٰ نے اس کا انعام کیا دیا کہ قیامت تک کے لیے نصارہ کا غلبہ یہود پر کر دیا، کہ انہوں نے اس وقت میں عیسیٰ علیہ السلام کو مانا جبکہ بہت سارے لوگ اس وقت ان کو ماننے والے نہیں تھے۔ یہی اللہ تعالیٰ کا معاملہ دنیا میں یہود اور نصارہ کے معاملے میں ہے، اور آخرت کا معاملہ وہ ہوگا جو اللہ کی سنت ہے۔ اِنَّ مَثَلَ عِیسَىٰ عِندَ اللّٰهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونَ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہوبہو آدم علیہ السلام کی مثال ہے، جسے مٹی سے بنا کر کہہ دیا کہ ہو جا، پس وہ ہو گیا۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، تیرے رب کی طرف سے حق یہی ہے، خبردار شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس لیے جو شخص آپ کے پاس سے سلم کے آ جانے کے بعد بھی آپ سے اس میں جھگڑا کرے تو آپ کہہ دیں کہ آؤ ہم تم اپنے فرزندوں کو اور ہم تم اپنی اپنی عورتوں کو اور ہم تم خاص اپنی جانوں کو بلا لیں، پھر ہم عاجزی کے ساتھ التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کریں۔ یقیناً یہی سچا بیان ہے، اور کوئی معبود برحق نہیں بجوس اللہ تعالیٰ کے، اور بے شک غالب اور حکمت والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر بھی اگر قبول نہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی صحیح طور پر فسادیوں کو جاننے والا ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 59 سے 63، اس کا عنوان ہے دلائل سے نہ مانے تو چیلنج دو۔ ان آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کے مشابہ کر دی گئی۔ ایک ہی دلیل جو آج کے اور کل کے ماضی کے نصارہ کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا یا خدا کہنے کی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ نے ان کو بن باپ کے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر یہ بات سچ ہے تو پھر تمہیں تو آدم کو بھی اللہ کا بیٹا بلکہ بڑا بیٹا ماننا چاہیے، کیونکہ آدم علیہ السلام کی تو ماں بھی نہیں تھی، عیسیٰ تو ماں کے ساتھ بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے در حقیقت اپنی تخلیق دکھانا چاہیے کہ وہ ہر طریقے سے پیدا کر سکتا ہے۔ چار ہی ممکن تخلیق کی صورتیں ہو سکتی ہیں، بن باپ کے، بن ماں کے، یا بن ماں اور باپ دونوں کے، یا ماں اور باپ دونوں کے ساتھ۔ آج ہم دنیا میں جو کچھ دیکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ ماں اور باپ دونوں کے ساتھ۔ آدم علیہ السلام وہ تھے جن کے ماں اور باپ دونوں نہیں تھے، عیسیٰ علیہ السلام وہ تھے جن کا باپ نہیں تھا، اور اسی طرح آدم علیہ السلام کی تخلیق میں کوئی عورت نہیں تھی۔ اصل میں بتانا یہ مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی تخلیق پہ غالب ہے، لیکن وہ لوگ جو ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں وہ ایسی ہی چیزوں کو بنیاد بنا کر بعض دفعہ بہت بڑے بڑے عقائد گھڑ لیتے ہیں۔ ہمارے لیے اس میں عمل کی بات یہی ہے کہ اگر کبھی کوئی कोई ऐसी बात कि जिसकी वजह से अगर एक दौर में कोई चीज़ अल्लाह ताला ने मोजज़े के तौर पे दिखाई, तो फिर हमें उसको बुनियाद बनाकर कोई अकीदा नहीं बना लेना चाहिए। और दर हकीकत वफद नजरान जो अल्लाह के नबी सल्लम के साथ गुफ्तो शनीद के लिए आया था, उनको यहाँ फिर एक चैलेंज भी दिया गया कि नहीं मानते। बस दफा कुछ चीजें इंसानों के दिल मान जाते हैं, और दिल हमेशा सच बोलता है अगर उसके ऊपर कुछ तासुबात के और दुनिया की मोहब्बत के पर्दे ना हो। उनके दिलों ने मान लिया था कि ईसा सच्चे हैं और उनको पता था कि ईसा अल्लाह की तरफ से है, लेकिन वो जुबानें जो इनकार कर चुकी थी वो फिर इकरार कैसे करती। बहुत आसान होता है ऐसी जुबानों को इकरार करना अगर दिल वुसअत कल्बी का मुजाहरा कर दे, लेकिन यहूद और नसारा जो बज़ाहिर आज हमें एक लगते हैं, दर हकीकत इनके दिल भी आपस में फटे हुए हैं। सूरत हशर में आप जाके इसको इंशाल्लाह मजीद देखेंगे। तो यहाँ इन्होंने ना माना, अब जब अल्लाह के नबी सल्लम ने कहा कि ठीक है नहीं मानते, फिर इनके साथ मुबाहला कर लेते हैं। मुबाहला क्या होता है, एक किस्म की मुनाजरा टाइप होता है। दोनों खुले मैदान में जाके वहां एक दूसरे को पुकारते हैं कि जो सच्चा है उसको अल्लाह ताला उसकी मदद आ जाए, और जो झूठा है फिर उसके ऊपर अल्लाह की लानत हो। आपने ये मुतालबा दिया, उनको चैलेंज पेश किया, लेकिन उनके बड़ों ने कहा कि खुदा के लिए इसको कबूल ना करना, क्यों कि तुम्हें पता है ये नबी सच्चा है, और अगर हमने इसका मुबाहला कबूल कर लिया हम में से कोई एक बाकी नहीं रहेगा। और इस तरह से फिर उन्होंने जिजिया दे के वापस पलटना चाहा, और ये उनकी खैर थी, क्योंकि अगर सरासर वो इस वक्त आ जाते इस मौके पे, तो हो सकता है कि फिर आज दुनिया में कोई एक नसरानी भी न रहता। तो दर हकीकत बात यह है कि दलील अपना आप मनवा के रहती है। कुल या अहलल किताब तआलौ इला कलिमतिन सवाम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह। आप कह दीजिए कि अहले किताब ऐसी इंसाफ वाली बात की तरफ आओ जो हम में और तुम में बराबर है, कि हम अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत ना करें, ना इसके साथ किसी को शरीक बनाए, ना अल्लाह को छोड़कर आपस में एक दूसरे को रब बनाए। बस अगर वो मुंह फेर लें तो तुम कह दो कि गवाह रहो हम भी मुसलमान हैं। अहले किताब तुम इब्राहिम के बारे में क्यों झगड़ते हो, हालांकि तौरात और इंजील तो इनके बाद नाजिल की गई, क्या तुम फिर भी नहीं समझते? सुनो, तुम लोग इसमें झगड़ चुके जिसका तुम्हें इल्म था, बस अब इस बात में क्यों झगड़ते हो जिस का तुम्हें इल्म ही नहीं, और अल्लाह ताला जानता है और तुम नहीं जानते। इब्राहिम ना तो यहूदी थे ना नसरानी थे, बल्कि वो तो यकतरफा खालिस मुसलमान थे, वो मुशरिक भी ना थे। सब लोगों में से ज्यादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम से नजदीक तर वो लोग हैं जिन्होंने इनका कहना माना, और ये नबी और जो लोग ईमान लाए मोमिनों का वली और सहारा अल्लाह ही है। अहले किताब की एक जमात चाहती है कि तुम्हें गुमराह कर दे, दरअसल वो खुद अपने आप को गुमराह कर रहे हैं और समझते नहीं। या अहले किताब लिमा तकफुरून बि आयात अल्लाह। अहले किताब तुम बावजूद कायल हो जाने के फिर भी दानिस्ता अल्लाह की आयतों का कुफर क्यों करते हो? अहले किताब बावजूद जानने के हक को बातिल को क्यों खलत मलत कर रहे हो और क्यों छुपा रहे हो? ये थी आयत नंबर 64 से 71। इनका उनवान है वहदते उम्मत की बुनियाद। फिर थोड़ा सा स्लैश डालिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। तौहीद वो कलिमा है जिसकी दावत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के तमाम अंबिया कराम ने दी, और ये वो दावत थी कि जो आज भी दुनिया में सारे लोगों को जमा करने के लिए नागुजीर है। हर दौर में लोगों ने लोगों को किसी एक इज्म पर जमा करने की कोशिशें की। किसी ने कहा कि कम्युनिज्म को मान लो, किसी ने सोशलिज्म को माना, लेकिन कोई भी अपनी जात की कुर्बानी देने को तैयार नहीं होता। यहाँ अल्लाह ताला ने उस दावत का जिक्र कर दिया कि जिसको हर एक मानेगा, जुबान ना माने लेकिन इंसान की फितरत मानती है कि ला इलाहा इल्लल्लाह। आज भी दीन इस्लाम ही वो वाहिद दीन है जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह पर है, और जिसने इस बुनियाद के ऊपर अपने आप को कायम किया अल्लाह ताला उसको जरूर उभारेगा। और जहाँ शिर्क होगा, जहाँ बातिल अकायद होंगे, बज़ाहर उसकी बड़ी रौनक होगी, बड़ा शोर व गुल होगा, लेकिन झाग की तरह वो बैठ जाता है। आज इत्तेफाक की बात कह लीजिए या अफसोस की बात कह लीजिए कि मुसलमान उम्मत के भी कितने ही गिरोह बन चुके कि जिसमें से कई लोग तौहीद का नाम लेने के बावजूद शिर्क का प्रचार करते हैं। ज़ाहर हम देखते हैं कि जब ऐसे लोगों के मजमे होते हैं तो लोग हजारों नहीं बाज़ दफ़ा लाखों की तादाद में होते हैं। वो रंग रौनक वाला दीन अच्छा लगता है, लेकिन ये दीन तब तक ही अपनी जिंदगी कायम रखता है जब तक वहाँ हक की चोट न पड़े। एक हक की बात बाकी सबको बातिल करने को तैयार हो जाती है। मक्का वाले दीन इब्राहिमी पर खुद को पाते थे, उनका ख्याल कहता कि हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं। यहूद और नसारा का भी यही दावा था, वो अपनी मजहबी तारीख को इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ जोड़ते थे। और हर दौर में लोगों ने अपने नबियों और बुजुर्गों के नाम को अपनी बिदात और तहरीफात के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन ऐसा होने लगता है कि अल्लाह का लाया व दीन पीछे हट जाता है और बुजुर्गों के नाम पे ही वो शिर्क करने लगते हैं जिन बुजुर्गों ने तौहीद की दावत दी होती है। कल भी यही था, आज भी यही है। अल्लाह तआला ने आयतों में बता दिया कि अगर कोई बुजुर्गों के दीन का हकीक हकीकी नुमाइंदा है तो वो हक की बात करेगा, और अगर कोई बुजुर्गों के नाम पर किसी चीज को बड़ा करना चाहता है तो फिर वो इस्लाम नहीं रहता। दीन इस्लाम तो दीन हनीफियत है, जो सबसे कटकर एक रब का बन जाए, और वो लोग जो गैर हनीफ होते हैं वो इधर उधर की चीजों में पड़ने लगते हैं, दीन की बुनियादी चीजों को छोड़कर छोटी छोटी बातों पे इस तरह उलझने लगते हैं कि उसी को मुकम्मल दीन बना देते हैं। इन आयतों को पढ़ते हुए पूरे दर्द के साथ दुआ कीजिए कि आज अल्लाह ताला हमारी उम्मत को भी ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे जोड़ दे, और आज वो लोग जो दीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर राजी और खुश हैं, अल्लाह ताला उनको तौफीक दे कि अपनी अपने नामों की और अपने लीडर्स की कुर्बानी करके सबको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे जोड़ दे। आमीन सुम्मा आमीन। وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ और अहले किताब की एक जमात ने कहा कि जो कुछ ईमान वालों पर उतारा गया है इस पर दिन चढ़े तो ईमान लाओ और शाम के वक्त काफिर बन जाओ ताकि ये लोग भी पलट जाएं, और सिवाय तुम्हारे दीन पर चलने के और किसी का यकीन न करो। आप कह दीजिए कि बेशक हिदायत तो अल्लाह ही की हिदायत है, और वो ये भी कहते हैं कि इस बात का भी यकीन न करो कि कोई उस जैसा दिया जाए जैसा तुम दिए गए, या ये कि ये तुमसे तुम्हारे रब के पास झगड़ा करेंगे। आप कह दीजिए कि फजल तो अल्लाह ही के हाथ में है, वो जिसे चाहे उसे दे, अल्लाह ताला वसअत वाला और जानने वाला है। यख्तसु बिरहमतिही मन यशा, वो अपनी रहमत के साथ जिसे चाहे मखसूस कर ले, और अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। बाज अहले किताब तो ऐसे हैं कि अगर इन्हें तू खजाने का अमीरदार बना दे तो भी ये तुझे वापस कर दें, और इनमें से बाज ऐसे भी हैं कि अगर तू इन्हें एक दीनार भी अमानत में दे दे तो ये तुझे अदा न करें। हाँ ये और बात है कि तू इनके सर पर ही खड़ा रहे, ये इसलिए कि उन्होंने कह रखा है कि हम पर इन जाहिलों यानी गैर यहूद के हक का कोई गुनाह नहीं। ये लोग बावजूद जानने के अल्लाह तआला पर झूठ कहते हैं। बला मन औफा बिअहदिही वत्तका फइन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, क्यों नहीं मुआहजा जरूर होगा, अलबत्ता जो शख्स अपना इकरार पूरा करे और परहेजगारी करे तो अल्लाह ताला भी ऐसे परहेजगारों से मोहब्बत करता है। ये थी आयत नंबर 72 से 76, इनका उनवान है साजिश बेनकाब हो गई। यहाँ अल्लाह ताला ने एक ऐसी साजिश का जिक्र किया कि जो यहूद ने मुसलमानों को इस्लाम से हटाने की, और वो क्या था कि पहले तुम दीन इस्लाम में दाखिल हो जाओ, कुछ दिन वहां रहो, और उसके बाद तुम कहो कि हमें तो इस दीन में कोई खैर ही नहीं मिली, और इस बात का खूब प्रचार करो। नतीजा क्या होगा कि वो लोग जो इस्लाम की तरफ आने की कोशिश में हैं, ये इस्लाम के बारे में इंटरेस्टेड हैं, वो भी शक में पड़ जाएंगे, और नतीजा क्या होगा कि लअल्लहुम यरजिऊन। ये साजिश कल भी थी और आज भी है। मेरे पास अखबार का एक टुकड़ा मौजूद है, चंद साल पहले बिल्कुल ऐसी ही एक साजिश नाकाम हुई। वेस्ट में एक ऐसा ग्रुप बना कि जिन्होंने जानते बूझते मुसलमान होने का दावा वो करते थे, और कुछ दिन इस्लाम में रहते लोगों में शोर मचता कि ये मुसलमान हो गए, और कुछ अरसे के बाद फिर वो इस्लाम से निकलते और उसका भरपूर फिर प्रचार करते और फिर इस एंटी इस्लाम बातें फैलाते। इसका मकसद क्या था कि देखो हमने तो अंदर जाके देख लिया, इनमें तो कोई खैर ही नहीं है। इसको मैं ऐसे ही समझती हूँ जैसे आप किसी स्टोर पे कुछ खरीदने जाते हैं और आप अपनी ट्रॉली में जो चीज रखें और सेम वही चीज आप देखें कि कुछ लोग जो हैं वो खड़े हुए वापस कर रहे हैं, तो एकदम शक होने लगेगा ना कि ये चीज जो मैं लेने लगी हूँ शायद ये ठीक नहीं होगी, लिहाजा आप भी शक में आएंगे। और ये एक ऐसा शक है जो बहुत सारे लोग दीन इस्लाम से लोगों को रोकने के लिए फैलाते हैं, वो तो नॉन मुस्लिम फैलाएंगे, आज तो मुसलमान भी अपने दीन से लोगों को मुतनफर करने के लिए कम नहीं। और अगर इसको और छोटे लेवल पे ले आइए तो बाज दफा तो मोहब्बत के नाम पे दीन की तरफ आने वाले भी लोगों को ऐसी ही बातों और हरकतों से रोक देते हैं। मसलन क्या कहा जाता है, जब कभी दीन के साथ ताल्लुक जुड़ता है तो लोग फिर उठते बैठते शादियों महफिलों दावतों में कहते हैं बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत रूल्स हैं, बहुत सांस खींच के बैठना पड़ता है, वहां तो बड़ी सख्ती हो रही है और वहां तो ये कर रहे हैं। अब आप तो शायद मोहब्बत में ये जुमले बोलते होंगे, लेकिन वो लोग जो पहले ही आने के लिए मतजब्जब होते हैं या शक में होते हैं वो और रुक के बैठ जाते हैं कि अच्छा ठीक है अब हम फिर नहीं जाते। तो कभी भी एक इंसान अपनी जुबान से या अपने कलम से कोई एक क्लिक करने लगे, कोई एक हाथ से लफ्ज लिखने लगे तो 10 दफा जरूर सोचे कि मेरे इस क्लिक से कोई अल्लाह के दीन से जुड़ेगा या टूटेगा। और हम मुसलमान इस दुनिया में अल्लाह के दीन के नुमाइंदे हैं। अगर हमारी हरकतें और हमारी कोशिशें लोगों को इस्लाम से दूर करने वाली हुई तो याद रखियेगा कि फिर उसके बाद हम कल अल्लाह की अदालत में जवाब दे होंगे। अल्लाह ताला हमें सच्चा हकीकी मुसलमान बना दे। ये अल्लाह की रहमत है कि उसने हमें मुसलमान बना लिया, ये उसने चुन लिया। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान होता है किसी को अपने दीन के लिए चुन ले, लेकिन इस आयतों में हमने देखा कि अल्लाह किसी को किसी नाम से नहीं चुनता। यहूद को इस पे बहुत गिला और एतराज था कि ये मुसलमान क्यों चुने गए, आखिर इनके पास क्या सनद है और इनको क्या हक पहुंचता है जब हम इतने बड़े दीन के अलमबरदार थे और हमारे पास 1 लाख से ज्यादा पैगंबर आए। अल्लाह ताला कहते हैं तुम कौन होते हो, ये अल्लाह के फैसले हैं, ये अल्लाह की हिदायत है। अल्लाह ताला यख्तसु बिरहमतिही मन यशा, अल्लाह का नबी बज़ाहर एक अकेला नबी दिखता था जिसके सर पे बाप और माँ का साया भी नहीं था, लेकिन याद रखिए जिसके पास हक होगा उसके साथ अल्लाह की जात होगी। अल्लाह के नबी पर कितने एतराज किए मक्का वालों ने और कितनी कोशिशें और साजिशें की यहूद ने, लेकिन आज दुनिया में सबसे बड़ा फैलता हुआ दीन दीन इस्लाम है। अल्लाह ताला के फैसले हमेशा वुसअत के होते हैं। फिर अल्लाह ताला की शान देखिए कि अल्लाह ताला ने यहूद के अगर तस्करे किए और उनकी बातों में जो कसरत से गालिब चीजें थी उनका तस्करा कर दिया जिसमें अक्सर मनफी अंदाज की थी, तो फिर अच्छी बात भी कर दी कि कुछ ऐसे भी हैं जो अमानतों को पूरा करने वाले हैं। इससे पता चलता है कि अगर हम किसी की बुराई बयान करें तो अगर उसके अंदर कोई खूबी है तो उसका भी जरूर जिक्र किया जाए, और असल में ये वो लोग थे कि जिनके सीने फिर अल्लाह ने खोल दिए और वो इस्लाम की तरफ आने लगे। इन्नल्लज़ीना यश्तरून बिअहदिल्लाहि व अयमानिहिम समनन कलीला, बेशक जो लोग अल्लाह के अहद और अपनी कस्मों को थोड़ी कीमत पर बेच डालते हैं इनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह ताला ना तो इनसे बातचीत करेगा और ना इनकी तरफ क्यामत के दिन देखेगा ना इन्हें पाक करेगा, और इनके लिए दर्दनाक अजाब है। यकीनन इनमें से एक ऐसा भी गिरोह है जो किताब पढ़ते हुए भी अपनी जबान मरोड़ता है ताकि तुम इसे किताब ही की इबारत ख्याल करो, हालांकि दरअसल वो किताब में से नहीं, और ये कहते भी हैं कि वो अल्लाह ताला की तरफ से है हालांकि दरअसल वो अल्लाह ताला की तरफ से नहीं है। वो तो दानिस्ता यानी जानबूझकर अल्लाह ताला की तरफ झूठ बोलते हैं। मा कान लि बशरिन, किसी ऐसे इंसान को जिसे अल्लाह ताला किताबो हिकमत और नबूवत दे ये लायक नहीं कि फिर भी वो लोगों से कहे कि तुम अल्लाह को छोड़कर मेरे बंदे बन जाओ, बल्कि वो तो कहेगा कि तुम सब रब के हो जाओ तुम्हारे किताब सिखाने के बायस और तुम्हारे किताब पढ़ने के सबब। वला यामुरकुम, और ये भी नहीं हो सकता कि वो तुम्हें फरिश्तों और नबियों का रब बना लेने का हुक्म करे, क्या वो तुम्हारे मुसलमान होने के बाद भी तुम्हें कुफर का हुक्म देगा। ये थी आयत नंबर 77 से 80। इनका उनवान है बंदों के नहीं रब के बन जाओ। इसी तरह इसका एक और टॉपिक भी लिख सकते हैं, शख्सियत परस्ती का रत। इन आयतों में कितना खूबसूरत क्राइटेरियन दे दिया गया, और वो क्या है कि किसी इंसान की तालीम की सच्चाई की दलील क्या है कि वो अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़े ना कि वो लोगों के साथ जोड़ दे। ऐसे ही लोगों को यहाँ रब्बानी कहा गया। किसी भी जगह आप दीन सीखें किसी जगह आप तालीम हासिल करें बहुत खुशी की बात है, अल्लाह ताला हक के साथ आगे बढ़ने की तौफीक दे, लेकिन एक मेयार हमेशा अपने दिल में डाल दीजिए कि किसकी तालीमात आपको अल्लाह से जोड़ती हैं और उसके बंदों के हकूक अदा करने के काबिल करती हैं, और किन की बातें किन की तालीमात आपको बुजुर्गों से और शख्सियात से और कुछ ऐसे नामों से जोड़ती हैं कि जिनकी कोई हुज्जत कुरान और सुन्नत में नहीं। बस जो बात आपको अल्लाह से जोड़े और अल्लाह के दीन के तकाजों में रखते हुए जोड़े इंशाल्लाह वो रब्बानियत की दावत है। इसके अलावा और कोई किसी और का बनने चाहे तो याद रखे कि ये शिर्क की किस्म है। हम पीछे पढ़ चुके कि ईमान वाले अल्लाह से मोहब्बत में शदीद होते हैं, और जो बंदा अपने नाजुक जज्बात का मरकज अल्लाह की बजाय किसी और को बना ले वही बातिल है। फिर अगली चीज हमने इसमें देखी और वो क्या थी कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करते, नाम मुसलमान होने का रखते हैं, हालांकि ईमान क्या है। जब एक शख्स मुसलमान होने का दावा करता है तो दर हकीकत वो इस बात का अहद करता है कि मैं अल्लाह की फरमा बरदारी करूंगा और अल्लाह के बंदों के बीच में इस तरीके से रहूंगा जैसे मुझे अल्लाह ने रहने का हुक्म दिया, मुख्तलिफ तरह से जो जिम्मेदारियों का बोझ मुझ पर होगा उसको मानूंगा। आप कह लीजिए कि ईमान एक पाबंद जिंदगी का दर्स देता है। जो शख्स इन पाबंदियों को कबूल कर लेता है वो सच्चा मुसलमान है, लेकिन जो शख्स अपने जाती फवायद और मसलहतों की वजह से अल्लाह और बंदों के साथ अपने मामले को दुरुस्त ना करे तो फिर ऐसा शख्स वही है कि दुनिया के बदले में आखरत को तरजीह देता है, और ऐसे लोग जो दुनिया को तरजीह देंगे कल जब आखरत में होंगे तो बिल्कुल बेकीमत होंगे, कुछ भी उनके हाथ में नहीं होगा। आज दुनिया में बहुत आसान है कि इंसान बात बात पे अपने दीन और ईमान को बेच ले। उसकी जेब नोटों से भर सकती है, उसके इर्द गिर्द मोहब्बतों के बहुत बड़े बड़े हिसार खींच सकते हैं, लोगों की नजरों में मकबूलियत हासिल हो सकती है, लेकिन याद रखिए आखिर कब तक। ऐसे शख्स को फिर अल्लाह ताला कैसे अपनी अनायतों का हकदार करे जो लोग अपनी बात को सच्चा करने के लिए अल्लाह की किताब में तब्दीलियां करते हैं, फिर वो आइन बाइन शाइन करने लगते हैं। आज का दौर, आज के मुल्क, ऐसे रहें तो ऐसे, वहां जाएं तो ऐसे, इस किस्म की तावीलात करते हैं कि जिसकी वजह से फिर वो अपनी बात को रब की बात साबित करना चाहते हैं। अल्लाह ताला हमें कभी इसकी तौफीक ना दे कि हम अपने दुनियावी अजायम और फवायद को अल्लाह की किताब से जायज़ करार दें। وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ। जब अल्लाह ताला ने नबियों से अहद लिया कि जो कुछ मैं तुम्हें किताब व हिकमत दूँ, फिर तुम्हारे पास वो रसूल आए जो तुम्हारे पास की चीज़ को सच बताए, तो तुम्हारे लिए इस पर ईमान लाना और इसकी मदद करना ज़रूरी है। फरमाया कि तुम इसके इकरारी हो और इस पर मेरा जिम्मा ले रहे हो। सबने कहा कि हमें इकरार है। फरमाया तो अब गवाह रहो और मैं खुद भी तुम्हारे साथ गवाहों में से हूँ। बस इसके बाद भी जो पलट जाए वो यकीनन पूरे नाफरमान हैं। अफ़ग़ैर दीन अल्लाह यबगून, क्या वो भला अल्लाह के दीन के सिवा और दीन की तलाश में है? हालांकि तमाम आसमानों और सब जमीन वाले अल्लाह ताला ही के फर्मा बरदार हैं, खुशी से हों या ना खुशी से, सब इसी की तरफ लौटाए जाएंगे। आप कह दीजिए कि हम अल्लाह ताला पर और जो कुछ हम पर उतारा गया और जो कुछ इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम और इनके औलाद पर उतारा गया और जो कुछ मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम और दूसरे अम्बिया अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से दिए गए, इन सब पर ईमान लाए। हम इनमें से किसी के दरमियान फर्क नहीं करते और हम अल्लाह अल्लाह के फरमाबरदार हैं। वमन यबतगी गैर अलइस्लामी दीना फलन युक्बल मिन्हु, जो शख्स इस्लाम के सिवा और दीन तलाश करे इसका दीन कबूल न किया जाएगा और वो आखरत में नुकसान पाने वालों में होगा। कैफ यहदिल्लाहु कौमन कफरू बादा ईमानिहिम, अल्लाह ताला इन लोगों को कैसे हिदायत देगा जो अपने ईमान लाने और रसूल की हक्कानियत की गवाही देने और अपने पास रोशन दलीलें आ जाने के बाद काफिर हो जाए। अल्लाह ताला ऐसे बेइंसाफ लोगों को राह रास्त पर नहीं लाता। इनकी तो यही सजा है कि इन पर अल्लाह ताला की और फरिश्तों की और तमाम लोगों की लानत हो, जिसमें ये हमेशा पड़े रहेंगे। ना तो इनसे अजाब हल्का किया जाएगा और ना इन्हें मोहलत दी जाएगी। इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बादी ज़ालिका वअस्लहू फ़इन्नल्लाहा ग़फूरुर रहीम, मगर जो लोग इसके बाद तौबा और इस्लाह कर लें तो बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। इन्नल्लज़ीना कफरू बादा ईमानिहिम सुम्मा इज़दादू कुफ्रा, बेशक जो लोग अपने ईमान लाने के बाद कुफर करें फिर कुफर में भड़ जाएं, इनकी तौबा हरगिज हरगिज कबूल न की जाएगी और यही लोग गुमराह हैं। इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू, हाँ वो लोग जो कुफर करें और मरते दम तक काफिर रहें, इनमें से कोई अगर जमीन भर सोना दे गो फिदिये ही में हो तो भी हरगिज कबूल न किया जाएगा, यही लोग हैं जिनके लिए तकलीफ देने वाला आज़ाब है और जिनका कोई मददगार न होगा। ये थी आयत नंबर 81 से 91। इनका उन्वान है अल्लाह के नबी की रिसालत का वादा। अल्लाह ताला ने दो बड़े अहद इंसानियत से लिए। एक वो अहद है जिसमें अल्लाह ताला के एक होने का तस्करा है, वो इंशाल्लाह सूरत अलाराफ में आएगा तो आपको नोट करवाया जाएगा। यहाँ हमने वो अहद देखा कि जो अल्लाह ताला ने अंबिया कराम से लिया और हर नबी जो है वो इस वादे को करके आया हुआ है कि जब उसकी जिंदगी में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएंगे तो वो अपने दीन को छोड़कर अल्लाह के नबी के दीन को अपना लेगा। इसी अहद की वजह से हर नबी ने अपने दौर में अपनी उम्मतों को यही कहा कि देखो अगर हमारे बाद तुम्हारी जिंदगी में किसी वक्त अल्लाह का नबी आ गया तो तुमने उसको मानने लगना है। इसी अहद की वजह से आज के यहूद नसारा और तमाम दीन वाले जो लोग अपने आप को किसी भी दीन पे कहते हैं, वो अगर अपनी किताबों पे या अपने दीन पर अमल करने का दावा करते हैं ना, तो फिर उनको अल्लाह के नबी पर ईमान लाना पड़ेगा। हमारे यहाँ आजकल एक मुगालता है और वो क्या है कि देखो ये बेचारे अपने दीन पे तो अमल करते ही है ना, चलो हम मस्जिद जाते हैं, ये चर्च जाते हैं, ये सिनेगॉग जाते हैं, ये अपने फलां जगह जाते हैं। हरज क्या है? हरज ये है कि इनके अगर अपने दीन पर अमल करने की बात देखी जाए तो फिर इनको अल्लाह के नबी को मानना पड़ेगा। और यही वो अहद है जिसको बुनियाद बना के कल क्यामत के दिन अल्लाह ताला फिर अल्लाह के नबी सल्लम के आने के बाद वाले लोगों को इस्लाम कबूल ना करने की पादाश में सजा देगा। आयत का नंबर नोट कर लीजिए, आयत नंबर 83 है जिसकी बुनियाद पर यह अहद है। और अल्लाह ताला चाहता क्या है कि लोग उसके बन जाएं, और जो अल्लाह को पा लेते हैं ना उसने पूरी कायनात को पा लिया, پوری کائنات کے یہاں متی اور مسلمان ہونے کی بات ہے۔ دو بار ہم نے ان آیتوں میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی بات کی، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، کیا تم اسلام کو چھوڑ کے کوئی اور دین لینا چاہتے ہو؟ کیا حق کو پہچان کر تم انجان بننا چاہتے ہو؟ تم یہ کہتے ہو کہ جب یہ بنی اسرائیلی پیغمبر کی زبان سے آئے تو یہ حق ہے، اور جب یہ اسماعیلی پیغمبر کی زبان سے آئے تو حق نہیں رہا۔ ایسے لوگ جو گروہ پرستی کی سطح پہ جیتے ہیں، حق پھر ان کو اس وقت ہی حق لگتا ہے جب ان کے گروہ کی زبان سے ہوتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حق کو گروہ پرستی سے آزاد کیا، انسان پرستی سے آزاد کیا۔ سچی بات جس کی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا۔ آج امت کا حال کیا ہے کہ جب کوئی بات ان کے مسلک کے امام یا ان کے خاص طرز سوچ رکھنے والے لوگوں کی زبان سے سنے تو ان کو حق لگتی ہے، لیکن وہی حق بات اگر ان کی جماعت، ان کے گروہ یا ان کے کسی آرگنائزیشن سے باہر کی ہو تو لوگ اس کو حق نہیں کہتے۔ تو یہ آیتیں بہترین دلیل ہیں اس بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں کو توڑا، کیف یہد اللہ قوماً کفروا بعد ایمانہم، غور کیجئے گا، یہ نان مسلمز کی بات نہیں، یہ کفار مکہ کی بات نہیں، یہ ان لوگوں کی بات ہے جو اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے لیکن اسلام کی قدر نہ کی۔ نام تو الاسلام لیتے ہیں لیکن پیغام ان کا انسانوں اور شخصیات کی طرف ہے۔ آپ نے دیکھا پورے چوتھے پارے میں بار بار اجتماعیت کی بات ہوئی، بار بار امت کو امت وسط بنانے کی بات ہوئی۔ اب انشاءاللہ اگلے پارے میں بھی جب ہم دیکھیں گے تو اس کا تو پورے کا پورا ٹاپک ہی ایک ہے کہ آج کے دور میں امت وسط کو درپیش مشکلات اور اس کا حل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں کا حق ادا کرنے والا بنا دے، اور ہم جس اسلام پہ پیدا ہوئے تھے اس اسلام پہ اللہ تعالی ہمیں موت دے۔ اور ہم ان آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ ہم بالکل نہیں چاہتے کہ ہم اسلام کو چھوڑ کے کوئی اور طریقہ لے لیں۔ ہم اگر مسلمان ہیں تو ہم یہی چاہیں گے کہ اللہ ہمارے عمل بھی مسلمانوں والے ہوں، جس طرح سورج چاند ستارے تیرے حکم کے آگے جی رہے ہیں، چل رہے ہیں، اللہ تو ہمیں بھی اسی طرح چلنے والا بنا دے، اور ہمارے ایمان کو ہماری زبان کی نوک سے اٹھا کے ہمارے جسم کے ایک ایک انگ پہ لگا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔